समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
कितने भी गहरे रहे गर्त, हर जगह प्यार जा सकता है। कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार भा सकता है। जो गिरे हुए को उठा सके, इससे प्यारा कुछ जतन नहीं। दे प्यार उठा पाए न जसे, इतना गहरा कुछ पतन नहीं। ये पंक्तियां हैं प्रसिद्ध कवि भवानी प्रसाद मिश्र की। जी हां, प्यार से सब कुछ ठीक किया जा सकता है। कठोरता दिखाकर आप कभी बलवान नहीं बन सकते, लेकिन प्यार दिखाकर आप सबके प्रिय जरूर बन सकते हैं। और शगुन, आपको पता है कि कल से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। ये पर्व माँ दुर्गा के नौ रूपों की उपासना के लिए समर्पित है। और इसी अवसर पर हमारे श्रोता आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल आराधना के साथ अपने दिन की मधुर शुरुआत कर सकते हैं और अपना पूरा दिन भक्ति में बना सकते हैं। इसी के साथ आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेर के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस खूबसूरत सुबह में मैं आपके साथ हूं आकर्षता सिंह, और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार आकर्षिता, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु आर ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क टू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। एंड बिफोर आई इवन बिगिन, लेट मी शेयर अ क्वोट विद यू ऑल लिसनर्स। लाइफ इज लाइक अ पियानो, व्हाट यू गेट आउट ऑफ इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू प्ले इट। Well, I'm talking about piano for a reason here, listeners. More on that on the show, along with latest news, international and national news, also Metro City updates, and we'll be exploring today's history. That is 29th of March 2025. So make sure, listeners, that you stick around with us till the end and you keep listening to us till the end. We'll begin with the headlines first, shall we?
Ji.
Prime Minister Narendra Modi has hailed the cabinet decisions approving the inclusion of the Kosi Maitri intra-state link project in Bihar under the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana Accelerated Irrigation Benefits Program and a four-lane Patna-Sasaram corridor project. In a social media post, Mr. Modi said the government is committed to the all-round development of Bihar. In this connection, the Kosi Maitri intra-state link project has been approved under the Prime Minister Agricultural Irrigation Scheme. He said, while this will provide water for irrigation in a large area, it will also increase the income of farmer brothers and sisters. In another post, the Prime Minister said that the four-lane greenfield and brownfield Patna-Ara-Sasaram corridor is great news for the people of Bihar. He said it will encourage economic growth and reduce traffic congestion as well. The cabinet yesterday approved the inclusion of Bihar's Kosi Maitri intrastate link project under the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana Accelerated Irrigation Benefits Program to enhance the things.
गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए पांच राज्यों के लिए 1,604 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को अनुमति दी है। ये राज्य हैं बिहार, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र और केरल। सरकार ने देश में आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए कई पहलों की शुरुआत की है। चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य आपदा मोचन कोष के अंतर्गत 28 राज्यों को 19,000 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए गए हैं।
यूनियन होम मिनिस्टर एंड सीनियर बीजेपी लीडर अमित शाह विल विजिट बिहार टुडे। ड्यूरिंग द टू-डे विजिट टू द स्टेट, मिस्टर शाह विल अटेंड सेवरल प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग अ पब्लिक मीटिंग एट गोपालगंज एंड स्टेट लेवल कोऑपरेटिव कॉन्क्लेव इन पटना। मिस्टर शाह विल होल्ड अ मीटिंग विद पार्टी लीडर्स इंक्लूडिंग लोकसभा एंड राज्यसभा एमपीज, एमएलएज, MLCs and other elected representatives in the evening. He will also hold a meeting with the state core committee of the BJP. Tomorrow he will inaugurate state-level cooperative conclave in Patna. He will also dedicate and lay foundation of various development programs and projects worth over 800 crore rupees. Later in the day, the union minister will go to Gopalganj and will address a public meeting.
आकाशवाणी का YouTube चैनल आराधना नवरात्र के पावन अवसर पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। श्रोताओं को कल से 6 अप्रैल तक गहन आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करने के लिए आकाशवाणी तैयार है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आराधना चैनल नवरात्र के मर्म के बारे में विशेष भक्ति कार्यक्रमों की श्रृंखला दर्शकों तक पहुंचाएगा।
नवरात्रि उत्सव का विशेष आकर्षण अनूप जलोटा, नरेंद्र चंचल, हरिओम शरण और अनुराधा पौडवाल जैसे प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा प्रस्तुत भजन होंगे। ये प्रस्तुतियाँ प्रतिदिन शाम 6 बजे से 7 बजे तक प्रसारित की जाएंगी। चैनल के बारे में प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने बताया कि चैनल एक विशेष श्रृंखला पेश करेगा जिसमें नवरात्रि के प्रत्येक दिन के महत्व पर प्रकाश डाला जाएगा।
इस वर्ष नवरात्रि के पावन अवसर पर आकाशवाणी के आराधना यूट्यूब चैनल पर हम अपने सभी श्रोताओं के लिए लेकर आ रहे हैं देवी माँ की भक्ति से सराबोर अनेकों कार्यक्रम। 30 मार्च से 6 अप्रैल तक आप जुड़े रहिए आराधना चैनल के साथ और सुनिए विशेष कहानियाँ, देवी माँ के अनेक स्वरूप और विभिन्न शक्तिपीठों पर खास कार्यक्रम। जुड़े रहिए आराधना चैनल से, जुड़े रहिए आकाशवाणी से।
नवरात्रि समारोह का समापन अयोध्या में स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर से सीधे राम जन्मोत्सव पर एक भव्य लाइव कार्यक्रम के साथ होगा। ये विशेष प्रसारण 6 अप्रैल को होगा जो पूरे देश के दर्शकों तक दिव्य उत्सव पहुंचाएगा। श्रोता नवरात्र के आध्यात्मिक सार का अनुभव करने के लिए आकाशवाणी के आराधना यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
Well, may the 9 days of Navaratri illuminate your soul and bring harmony, well, starting from tomorrow.
लाल रंग से सजा माँ का दरबार, हर्षित हुआ मन, पुलकित हुआ संसार, अपने पावन कदमों से माँ आए आपके द्वार, मुबारक हो आपको नवरात्रि का ये त्योहार। तो शगुन कल से नवरात्रि भी शुरू हो रही है और इसी उपलक्ष में आकाशवाणी ने भी अपनी जो है एक विशेष प्रस्तुति का आयोजन किया है।
जी जी, definitely, Navaratri is starting tomorrow and we'll have wonderful time and illuminate this Navaratri festival well. We hope that it illuminates our soul and bring harmony everywhere. Moving forward, India has sent nearly 15 tons of relief material to Myanmar following yesterday's earthquake, with an Indian Air Force C-130J aircraft transporting the aid from Hindon Air Force Station. The relief package includes essential supplies such as tents, sleeping bags, blankets, ready-to-eat meals and generator sets. Additionally, crucial medical supplies like paracetamol, antibiotics, syringes, gloves and bandages are being dispatched to support those affected by the disaster. Prime Minister Narendra Modi had expressed concern over the earthquake which occurred in Myanmar and Thailand. In a social media post, he prayed for the safety and well-being of the citizens of both the countries. He added that India stands ready to offer all possible assistance and asked the External Affairs Ministry to remain in touch with the governments of Myanmar and Thailand. Replying to a query, Foreign Secretary Vikram Misri said they are in touch with authorities in Myanmar and looking at the exact requirements in terms of the assistance and relief materials. He said India has always been the first responder in the neighborhood whenever these kinds of natural disasters have taken place. A powerful earthquake rocked Myanmar and neighboring Thailand yesterday, destroying buildings, bridges and a monastery.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। 2 दिन के इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण कर रहा है। सम्मेलन में 4 प्रमुख तकनीकी सत्र होंगे जिनमें जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास सहित पर्यावरण के समक्ष चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी।
वेल नाउ लेट्स गिव यू सम स्पोर्ट्स अपडेट्स। फर्स्ट बिगिनिंग विद द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 वेयर इंडियन रेसलर मनीषा भानवाला क्लिंच्ड इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल सिंस 2021 एडिशन, वेल अंतिम पंगल सेटल्ड फॉर ब्रॉन्ज एट अमन इन जॉर्डन। In women's 62 kg category final, Manisha defeated Korea's KJ Kim. In 53 kg category, bronze player of Antim Pangal defeated Taipei's Meng H. Hsi by technical superiority without conceding a point. Indian wrestlers have now won 1 gold, 1 silver and 6 bronze medals, including 2 by Greco-Roman wrestlers in the tournament.
आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 50 रन से हरा दिया। कल रात पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 196 रन बनाए। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 146 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मैच अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आज सवेरे में अब प्रमुख महानगरों से जुड़ी प्रमुख खबरें और अब चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद की खबरों के साथ हैं शगुन।
यस आकर्षिता, वील बिगिन विद चेन्नई अपडेट। दी अरिगनार अना जूलॉजिकल पार्क इन वेंडलूर मिस चैम्बर्स हैव बीन इंस्टॉल्ड एट 7 लोकेशंस ऑन द प्रेमिसेस। These chambers spray a fine mist of water, drawing from nearby tanks almost 9,000 liters of water, which is used every day. They operate between 11 a.m. and 4 p.m. to provide relief to visitors. The facility has been expanded as part of the broader summer plan. Zoo authorities have also put measures in place to reduce heat stress for animals. Shade nets are fixed over the enclosures of large carnivore animals. Bird enclosures are covered with gunny bags which are sprayed with water regularly to keep their space cooler. We have more updates from Chennai here. In some sports news now, para-athlete A. Arulmoli suffered from locomotor disability and has won 2 gold medals at the national level at the Power Lifting Championship. The championship games were held in Noida on 23rd of this month. The team said it was a momentous occasion. Now moving on to Bengaluru. ISRO's former chairman, Dr. S. Somnath, who is currently the Vikram Sarabhai Distinguished Professor, has said that the biggest challenges can be solved with the help of technology. He was addressing the 50th convocation of IIMB in Bengaluru as the chief guest. In his address, Dr. S. Somnath advised the students to be aware of the impact of technology on life and society. He spoke on how the emerging technologies will play a significant role. A robot may replace other devices, translating commands to actions. In terms of power, water, healthcare, learning, resources, there would be no scarcity and poverty, and famine may come down. The connectivity will increase with AI. The diagnostics equipment will advance and sensory perception of human beings will be enhanced. The carbon footprint will come down with green hydrogen initiatives and sun-powered chemistry and biomedical interventions will improve living conditions. A total of 798 students from various programs have graduated, including 18 doctorate programs and 80 postgraduates. Now let's turn our attention to Hyderabad. The Telangana government will begin the distribution of free fine rice to ration card holders across the state from Ugadi, Telugu New Year Day, tomorrow. State Civil Supplies Minister N. Uttam Kumar Reddy announced this last evening. Addressing the media, he claimed the scheme as the largest of its kind in the country. Chief Minister Erivanth Reddy will be officially launching the scheme tomorrow at a public meeting in Huzurnagar. The minister further said, every eligible beneficiary will receive 6 kg of fine rice per month through the public distribution system from 1st of April. The scheme will be benefiting about 3 crore 10 lakh people in the state, which is nearly 85% of the state population. The minister further said, coarse rice was distributed till now, which led to low consumption and widespread black marketing. He also said the state currently has around 90 lakh ration cards covering 2.85 crore people and the government plans to add 30 lakh new cards after verifying pending applications, bringing the total number of beneficiaries to 3 crore and 10 lakhs. And now, Akashita will be giving us the updates about Delhi, Mumbai and Kolkata. Over to you.
Ji, pehle khabrein Delhi se. दिल्ली विधानसभा में कल दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी के कामकाज पर कैग रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्ववर्ती आम आदमी सरकार पर डीटीसी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार ने डीटीसी का दुरुपयोग और कुप्रबंधन करके इसे चौपट कर दिया था। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार को बसें खरीदने के लिए केंद्र सरकार से 233 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन सरकार उन्हें खर्च ही नहीं कर पाई। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि विधानसभा परिसर में पहली बार हिंदू नववर्ष मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर कल दिल्ली विधानसभा में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और विधानसभा को सजाया जाएगा। श्री गुप्ता ने कहा कि इसे एक परंपरा के रूप में शुरू किया जा रहा है। वहीं कल दिल्ली समेत देश भर में जुमातुल विदा हर्षोल्लास से मनाया गया। जुमातुल विदा रमजान के आखिरी शुक्रवार को मनाया जाता है। इस दिन को अलविदा जुमा भी कहा जाता है। ये रमजान के महीने के समापन और ईद की शुरुआत का प्रतीक होता है। कल दिल्ली की जामा मस्जिद, फतेहपुर मस्जिद और सुनहरी बाग मस्जिद समेत सभी मस्जिदों में भारी संख्या में लोगों ने एक साथ नमाज अदा की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा है कि रेस्टोरेंट खाद्य बिलों पर अनिवार्य सेवा शुल्क नहीं लगा सकते। इसमें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देशों को चुनौती दी गई थी, जिसमें ऐसे शुल्कों पर रोक लगाई गई थी। न्यायालय ने कहा कि अनिवार्य सेवा शुल्क करों की तरह प्रतीत होकर उपभोक्ताओं को गुमराह करते हैं और अनुचित व्यापार व्यवहार के समान है। और अब खबरें मुंबई से। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर के लगभग 64 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए बीमा मुआवजे में 2555 करोड़ के वितरण को मंजूरी दे दी है। कृषि मंत्री एडवोकेट मणिकराव कोकाटे ने घोषणा की कि ये राहत पैकेज सीधे किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में जमा किया जाएगा। राज्य सरकार ने बीमा कंपनियों को बकाया 2852 करोड़ की लंबित सब्सिडी का भी भुगतान कर दिया है। बीमा कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे किसानों को समय पर लाभ पहुंचाने के लिए प्रक्रिया में तेजी लाएं। इस निर्णय का उद्देश्य पूरे महाराष्ट्र में कृषक समुदाय को अत्यंत आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुंबई के राजभवन में आईएमसी मियावाकी वन का उद्घाटन किया और इस पहल के लिए आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सराहना की। उन्होंने चैम्बर को राज्य विश्वविद्यालयों में इस तरह की परियोजनाओं को दोहराने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में छात्रों को शामिल किया जाए। राज्यपाल ने परियोजनाओं पर एक सूचना पुस्तिका भी जारी की और एक स्मारक पट्टिका का अनावरण किया। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान यात्रा को आसान बनाने के लिए मध्य रेलवे ने शिक्षकों के लिए विशेष ट्रेनों की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य भीड़भाड़ को कम करना और यात्रा को आरामदायक बनाना है। इसके अतिरिक्त मध्य रेलवे एलटीटी मुंबई से विभिन्न गंतव्यों के लिए 278 अनारक्षित ट्रेनें सहित 854 ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनें संचालित करेगा। इस कदम का उद्देश्य भीड़ से निपटना और यात्रियों के लिए सुगम परेशानी मुक्त यात्रा प्रदान करना है। और अब खबरें कोलकाता से। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल को पश्चिम बंगाल का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। वे 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। पूर्व सीईओ आरिज आफताब 3 महीने पहले सेवानिवृत्त हुए थे। वर्तमान में अतिरिक्त सीईओ दिव्यांदु दास इस पद को संभाल रहे हैं। और अब महानगरों के मौसम का हाल। सबसे पहले दिल्ली के मौसम का हाल। आज दिल्ली में दिन के समय तेज हवा चल रही थी और शगुन आज सुबह काफी ठंडी हवाएं चल रही
इन द मॉर्निंग। यस यस डेफिनेटली एंड ऑफर्स सम रिलीफ फ्रॉम द हीट व्हिच वाज प्रिवेलिंग फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज।
और अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। वहीं मुंबई में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 33 डिग्री और अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहने का अनुमान है। और कोलकाता में भी आसमान साफ रहेगा, तापमान 37 और 23 डिग्री के बीच रहने की संभावना है।
Now talking about Chennai, it is expected to have a partly cloudy sky. The minimum temperature was 26 degrees Celsius and maximum will be around 36 degrees. Bengaluru is also expected to have a partly cloudy sky. The minimum temperature was 22 degrees Celsius and maximum will be around 34 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between minimum of 26 degrees and a maximum of 39 degrees Celsius. So now let's talk about the history of today. We'll explore the history of today, that is 29th of March. And listeners, a very interesting day which I was talking about in the beginning is observed today. Well, It's piano, and I'm sure music lovers will be glad to know that today is the World Piano Day. It is celebrated annually on the 88th day of the year, which is actually March 29th in 2025 this year. Let us tell you that the 88th day was chosen in correspondence to the number of keys which are available on a piano. 88 keys, which means 88th day. And in 2025, it is the 10th anniversary of World Piano Day, which holds symbolic significance representing the 88 keys found on a standard piano. This special day also serves as a tribute to the piano's rich history here, Agarjita, and its enduring impact on music across cultures and genres. Well, it is included in so many songs, right? Wonderful songs over here. And Nils Fram, a German pianist and composer, he founded World Piano Day in the year 2015. And the reason behind this was to have a global celebration of this wonderful instrument that has shaped his own music. His own music, he had this major impact, this particular instrument had major impact on his own music and of others for centuries. And it encourages individuals of all ages and skills levels to engage with this instrument and also inspire creativity and collaboration with other fellow musicians, composers and piano enthusiasts worldwide. Now let's take you back in time. In the year 1807, German astronomer Wilhelm Obers discovered the minor planet Vesta, the brightest asteroid in the sky.
सिपाही मंगल पांडे भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री विद्रोहों और लंबे समय से चल रहे 1857 के सिपाही स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने गए और आज के ही दिन 1953 में हिलेरी तथा तेनजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर विजय की गई।
इंडिया 1958 First reading of the Keeling curve, which shows carbon dioxide levels in Earth's atmosphere, Dr. Charles David Keeling began regularly measuring the amount of carbon dioxide in the atmosphere from the Mauna Loa Observatory in Hawaii. Over the ensuing years, his research revealed what is now known as the Keeling curve, a graph of continuously taken measurements showing the rapid accumulation of carbon dioxide. This happened in 1958.
आज के दिन ही 1974 में एक चीनी किसान को कुआं खोदते समय कुछ मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले जिससे एक आश्चर्यजनक खोज हुई। 8,000 से अधिक आदमकद योद्धाओं की एक सेना जिनमें से प्रत्येक अद्वितीय था 2,200 से अधिक वर्षों से एक शाही मकबरे में दफन थी।
Well, in the same year, in 1974 again, the unmanned U.S. space probe Mariner 10, launched by NASA in November 1973, became the first spacecraft to visit the planet Mercury, sending back close-up images of a celestial body usually obscured because of its proximity to the Sun.
और अब बात उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। साक्षी है इतिहास हम ही पहले जागे हैं जागृत सब हो रहे हमारे ही आगे हैं शत्रु हमारे कहां नहीं भय से भागे हैं कायरता से कहां प्राण हमने त्यागे हैं हम ही प्रकंपित कर चुके सुरपति तक का भी हृदय फिर एक बार हे विश्व तुम गाओ भारत की विजय ये पंक्तियां हैं हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई सिया राम शरण गुप्त की आज उनकी पुण्यतिथि है उन पर गांधीवाद का विशेष प्रभाव रहा है इसलिए उनकी रचनाओं में करुणा सत्य अहिंसा की मार्मिक अभिव्यक्ति मिलती है हिंदी साहित्य में उन्हें एक कवि के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त हुई लेकिन एक मूर्धन्य कथाकार के रूप में भी उन्होंने कथा साहित्य में अपना स्थान बनाया उनकी मुख्य रचनाएं हैं अनाथ विषाद दैनिकी नकुल जय हिंद आदि
ओके नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट अ पोएट एंड अ हिम्न राइटर Well, a prolific hymn writer, Charles Wesley. He wrote over 6,500 hymns during his lifetime. And let me tell you, name some of his works, two works mainly. And it can be Love Divine or Love's Excelling. So, prolific hymn writer here, Charles Wesley.
तुमने जो दिया है वो सब हवा है प्रकाश है पानी है छंद है गंध है वाणी है उसी के बल पर लहराता हूँ ठहरता हूँ बहता हूँ झूमता हूँ आज जन्म हुआ था प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक भवानी प्रसाद मिश्र का भवानी प्रसाद मिश्र उन गिने चुने कवियों में थे जो कविता को ही अपना धर्म मानते थे और आम जनों की बात उनकी भाषा में ही रखते थे। उन्होंने कवियों को नसीहत भी दी थी कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और इसके बाद भी हमसे बड़ा होकर तू दिख। अज्ञेय ने दूसरे तार सप्तक में उनकी कविता को प्रकाशित किया। उनका प्रथम संग्रह गीत फरोश अपनी नई शैली, नई उद्भावनाओं और नए पाठ प्रवाह के कारण काफी लोकप्रिय हुआ। उनकी कविताओं में नए भारत का स्वप्न झलकता है। उनकी कविताएं परिवर्तन और सुधार की अभिव्यक्ति हैं। उन्होंने खुद को कभी निराशा के गर्त में डूबने नहीं दिया। उन्होंने सृजन की भावुकता और जीवन की व्यवहारिकता के बीच पशुपेश की बेबाकी से अभिव्यक्त किया। उन्हें 1972 में बुनी हुई रस्सी नामक रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से पुरस्कृत किया गया।
Well, today, as it's World Piano Day, it is definitely very worthy to talk about a pianist, Valentin Alkin, French pianist and composer, a notable keyboard virtuoso and one of the most enigmatic figures in the 19th century music. And from the late 1960s onwards, led by Raymond Leventhal and Ronald Smith, many pianists have recorded his music and brought it back into the repertoire. And this is his wonderful music to listen to, listeners. Listen in. Such complex piano music over there for you.
आज प्रसिद्ध अभिनेता उत्पल दत्त की भी जयंती है। उन्होंने हिंदी और बांग्ला फिल्मों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। एक अभिनेता के रूप में उत्पल दत्त ने लगभग हर किरदार को निभाया। कभी पिता तो कभी चाचा, कहीं डॉक्टर तो कहीं सेठ, कभी बुरे तो अच्छे बने उत्पल दा के अभिनय को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उत्पल दत्त को अधिकतर एक हास्य अभिनेता के रूप में याद किया जाता है। वर्ष 1989 की सुपरहिट फिल्म गोलमाल में उनके निभाए भवानी शंकर का किरदार देखकर आज भी लोगों के हंसी के फव्वारे छूट पड़ते हैं।
You're right about that.
और आइए सुनते हैं उनकी फिल्म गोलमाल से उनका ये डायलॉग।
बुड्ढा है घर में? कौन बुड्ढा? वही तुम्हारा मालिक भवानी शंकर। ये आपसे किसने कहा कि भवानी शंकर बुड्ढा है? अरे मालिक, जिसका नाम भवानी शंकर हो वो तो पैदा होते ही बुड्ढा हो गया, क्यों है ना? अच्छा जाओ बुलाओ बुलाओ, आप यहाँ बैठिए, मैं बुलाता हूँ। कम इन यंग मैन। मॉर्निंग।
आप?
मेरा नाम भवानी शंकर है।
आई जो
आपका भी कोई जुड़वा भाई है क्या
जो यहाँ माली का काम करता है?
नहीं, मेरे यहाँ कोई माली वाली नहीं है, मैं खुद ही अपना बगीचा संभालता हूँ।
अरे रे 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 रे। तब तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी।
क्या?
फिर मैंने आपको बुड्ढा कह दिया।
क्या हुआ?
बुड्ढा तो मैं हूँ ही।
हाँ
बुड्ढे तो आप हैं ही, लेकिन यू नो जैसे अंधे को अंधा नहीं कहना चाहिए, लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहना चाहिए, वैसे ही बुड्ढे को बुड्ढा नहीं कहना चाहिए, इससे उसके मन को ठेस पहुंचती है। Am I right?
Well, definitely. Definitely makes us laugh till now. A towering figure in Indian theatre and cinema, he left an everlasting impact with his versatile performances and powerful ideologies. From pioneering modern Bengali theatre with the Little Theatre Group to his unforgettable roles in films like Rang Birangi and Golmaal, as we made you hear this dialogue, his legacy is a blend of artistic brilliance. His portrayal of memorable characters across genres makes him a true stalwart of Indian cultural history as well. His contributions continue to inspire and resonate even today. Utpal Dutt.
जी, उत्पल दत्त एक उच्च दर्जे के अभिनेता ही नहीं, कुशल निर्देशक और नाटककार भी थे। सीरियस से लेकर कॉमेडी तक के हर रोल को उन्होंने बड़ी संजीदगी से निभाया था। 1950 में मशहूर फिल्मकार मधु बोस ने उन्हें अपनी फिल्म माइकल मधुसूदन में लीड रोल दिया, जिसे काफी सराहा गया। इसके बाद उत्पल दत्त ने सत्यजीत रे की फिल्मों में भी काम किया। गुड्डी, गोलमाल, नरम और शौकीन जैसी फिल्में भी उन्होंने की। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।
गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, हर सीधे रस्ते की है तेरी चाल है, सीधे रस्ते की है है।
Now let's talk about another comic icon, but before I begin, I even begin talking about him, listen into this dialogue.
ये मांग रहे हो? वो नोट तो 2 रुपए का था। अरे तो ये लकड़ी 2 रुपए की है।
2 रुपए में इतनी सी लकड़ी?
ओ नहीं तो क्या, 2 रुपए में आप सारा जंगल खरीदने निकले थे? देखो हाँ, अब भूत हो गया, अब तो आप यहाँ से रवानगी डाल दो, वरना मेरा नाम भी सूरमा भोपाली ए भाई नहीं है, समझे? चलो।
Well, this is Sayed Ishtiaq Ahmed Jafri, better known by his stage name Jagdeep, had been a part of several films through 70s, 80s and his impeccable comic timing and electric screen presence can be heard in this dialogue.
और अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए आकर्षिता और शगुन को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।